आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गीता दीदी जी जब स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे तभी आपको ये ज्ञान मिला, और उसके बाद तो फिर जब आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्जामिनेशन पास की उसके बाद अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आपका भी लगभग 50 वर्षों का समर्पित जीवन का इतिहास है। आरंभ में चूंकि आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं, तो पहले गुजरात की धरनी में ही सेवाएं दी, सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद, और फिर 14 वर्षों तक लगातार भावनगर में रहे जहां सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद तो 93 में ज्ञान सरोवर के बनने का कार्य शुरू हो गया था, तो फिर आप ज्ञान सरोवर में पहुंचे। वहां पर भी करीब 17-18 वर्षों तक रहकर आपने बहुत अपनी अमूल्य सेवाएं दी, गाइड की सेवाएं कहें, रिसेप्शन की सेवाएं कहें, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, साल भर जो प्रोग्राम चलते उसका सुचारू संचालन, और साथ साथ राजयोगा टीचर के रूप में बहुत अमूल्य सेवाएं दी। और फिर तो शांतिवन में नीचे बेहद विस्तार हो रहा था, तो फिर पिछले 10-12 वर्षों से आप शांतिवन में रहकर सेवाएं दे रही हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के स्पेशल क्या कहेंगे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, और बाहर भी आप सेवाओं अर्थ भ्रमण करते हैं। भट्टी की अनेक टीचरों में से आप भी एक टीचर हैं, कुशल राज्यों प्रशिक्षिका हैं, बहुत सारी प्रतिभाओं की धनी जैसा आपका नाम है गीता बहन, और हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता की मुख्य शिक्षा क्या, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इन सब में क्या रहना है, समदृष्टि रहना है, स्थिर बुद्धि रहना है, जो आपके जीवन से उसकी झलक देखने को मिलती है। तो हम आपसे आज सुनेंगे एकांत और एकाग्रता द्वारा एकरस स्थिति, एकांत और एकाग्रता द्वारा एकरस स्थिति। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति।
दो दिन की तपस्या तो हो गई ना? इसमें भाई बहने भी बहादुरगढ़ के हैं सभी? हाँ, अच्छा, टीचर्स का ग्रुप नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा। वैसे भी कहते हैं ना, गाड़ियों से आओ, मुन्नी बहन तो ऐसे ही कहते, बाय रोड आओ, सेफ्टी है ना। हम सभी सालों से अच्छे पुरुषार्थी हैं, जब सत्य ज्ञान समझ में आ जाता है और निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो हमारी लगन लग जाती है और पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। क्योंकि हम ज्ञान को जीवन में धारण करना चाहते हैं, हम अपनी एक शक्तिशाली पवित्र और ऊंच अवस्था बनाना चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेट तो जिस अवस्था से, जिस आत्मस्थिति से हम अपना संगम युग पूरा करेंगे, उसी आत्मस्थिति से सतयुग को शुरू करेंगे। इसलिए बाबा मिले, सद्ज्ञान मिला, वो एक सौभाग्य तो है ही, परंतु उसमें से जो हम अपने मन वचन कर्म में धारण करेंगे, एक स्टेज बनाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है ना। बाबा ने तो दिया संपूर्ण और सत्य ज्ञान दिया, पर हमारे जीवन में कितना आया है ना, धारणा कितनी हुई, और उस धारणा से शक्तिशाली वृत्ति, दृष्टि, कृति जितनी बनाएंगे उतनी स्थिति आत्मा के साथ चलेगी। इसलिए व्यक्तिगत रूप से भी पुरुषार्थ करते हैं और इस प्रकार के तपस्या के प्रोग्राम बना के भी हम अपनी अवस्था बनाते हैं। तो संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति है आत्मिक स्थिति, आत्म अवस्था हमने कैसी बनाई। बाबा आकर ज्ञान देते, क्योंकि जब तक मूल सत्य पता नहीं चलता सही पुरुषार्थ शुरू नहीं होता। भक्ति में हमने बहुत मेहनत की, पर उसको हम उसको बाबा पुरुषार्थ नहीं कहते, भटकना कहते। पुरुषार्थ तो लक्ष्य से किया जाता है और सही समझ से किया जाता है। हमारा सौभाग्य ये है कि हमें बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठा, समझ में आया। हमने अपने आप को जाना पहचाना, बाबा को जाना पहचाना, समय को पहचाना। हमारे में अवेयरनेस आ गई, आत्मा जाग गई, तीसरा नेत्र हमें मिल गया कि ये कौन सा समय है, कौन कह रहा है और मुझे क्या करना है। अगर हमने इसको यथार्थ रूप से समझा है तो फिर मन बुद्धि भटकेंगे नहीं। हम लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाएंगे। जो करना है उस एक दिशा में हम केंद्रित हो जाएंगे, तभी कहेंगे कि समझा, वरना क्या समझा। अगर हमने ये सारी बातें समझी कि सच में भगवान आए हैं, महापरिवर्तन हो रहा है और मुझे समय को पहचान कर सावधान होकर और भगवान के आदेश को मानकर अब क्या करना है। तो जितना गहराई से ये बातें समझते हैं, महसूस करते हैं, उस एक लक्ष्य की दिशा में कि मुझे वही शुद्ध सत्य आत्मा बनना है। अज्ञानता के कारण विषय विकार संस्कार में आए, पर ज्ञान समझा मीन्स अब माया से धोखा नहीं खाना। समझने का मतलब ही है आत्मा का जाग जाना। फिर निरंतर हम जागृत होकर, फोकस्ड होकर, क्यों बाबा रोज एम ऑब्जेक्ट की याद दिलाता है। रोज लक्ष्य की कोई ना कोई बातें आती है मुझे, क्योंकि हमें पूरी लाइफ उसको फॉलो करना है। ज्ञान ना होने के कारण विकारों के वश होते हैं, तो बाबा कहते ना आत्मा शूद्र बन गई। कल परसों की मुरली में ही था ना कि काम के वश होते हैं तो कहते हैं पतित हो। अब जब ज्ञान मिला तो पवित्रता की धारणा हुई, हम शूद्र से रजो स्थिति में आए, वैश्य स्थिति में आए, क्योंकि साइकिल रिवर्स होके सतो तक पहुंचेगा ना। और वैश्य स्थिति की दो कमजोरियां हैं, लोभ और मोह। देह की जाति से भी जो वैश्य है उसमें आप देखेंगे कि लोभ और देह संबंधों में मोह, ये दो कमजोरियां उसमें ज्यादा होती। नित्य ज्ञान योग करके लोभ और मोह पर जीत पाते हैं, चाहे घर में रहो, चाहे यज्ञ में समर्पित होके रहो, या ट्रस्टी बन के रहो। ये चीजें चेक तो करनी पड़ती है अपने आप में। पवित्रता की मंजिल हम सहज पार कर लेते हैं, क्योंकि हम कल पहले वाली देवता घराने की आत्माएं। पर पवित्र बनने के बाद हमारे जीवन में, संबंध में, प्रवृत्ति में लोभ और मोह को चेक करना। उस पर विजय पाते हैं तो रजो से सतो स्थिति पर पहुंचते हैं, वैश्य से क्षत्रिय बनते हैं। और क्षत्रिय स्टेज में क्रोध और अहंकार, ये दो कमजोरियां होती। लौकिक में भी आप देखिए क्षत्रियों में क्रोध और अहंकार होते हैं। उस पर विजय पाने का प्रसाद। स्वदर्शन करना पड़ेगा, अपने आप को देखना होगा। भले ओवरऑल हमारी धारणाएं हैं तो लगता है कि अब और क्या पुरुषार्थ करना, पवित्र बन गए, योगी बन गए, नियम मर्यादाओं में चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अब और क्या पुरुषार्थ करना है। परंतु जितना अपने आप को सूक्ष्मता से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वश हो जाते। अवस्था वाई ऊपर नीचे होती है ना, बाकी तो अच्छी रहती है। पर हम डिस्टर्ब कहां होते हैं, हमारी स्थिति ऊंची नीची कहां होती, जहां हम कहीं भी वशीभूत होते हैं। अगर लक्ष्य है, ये सारी बातें उनके लिए हैं जिनको लक्ष्य है कि विजयी बनना है, बाप समान बनना। संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनना है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को ये मजबूत रोज कराना है कि लक्ष्य क्या है। जो जीवन बना है उसी से हम खुश हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारा जीवन बहुत अच्छा है। हम पवित्र हैं, योगी हैं, नियम मर्यादाओं में चलते हैं, सेवा करते हैं, हम इसी से संतुष्ट हैं, या हमें अपने आप को सूक्ष्मता से चेक करके संपूर्ण प्राप्ति करनी। बाबा जो हमें पढ़ाई करा रहे हैं, बाबा जो हमारे पीछे पालना दे रहे हैं, इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, वो तो संपूर्ण बनाने के लेवल से करा रहे हैं। पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की, पालना भी बाप समान बनाने की। मेहनत तो हमारे पीछे बाबा उस लेवल की कर रहे हैं। तो मुझे क्या रिजल्ट देना है? हम बाबा के तरफ से निमित्त बनकर सेंटर चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो रिजल्ट कौन सा देना है? तो ये रोज पक्का करना होगा। तभी सूक्ष्म पुरुषार्थ चलता है, तीव्र पुरुषार्थ चलता है। जब क्रोध और अहंकार, बाबा कहते हैं ना कि भाई हम निमित्त बने, ट्रस्टी बने, मान शान स्थान प्राप्त किया, उसका भी अहंकार नहीं, उसका भी अहंकार नहीं। क्योंकि पता है ना, बाबा ने ही बनाया है हमें। बिना बाबा के सत्य ज्ञान या बिना बाबा की याद हम ये स्थिति पा ही नहीं सकते। इसलिए क्रोध और अहंकार, उनके सूक्ष्म रूप, उस पर विजयी बनना। मन मुटाव होना, अनबन होना, एक दूसरे से बात नहीं करना, घृणा, नफरत, तिरस्कार, नाराजगी, ये सब गुस्से के ही स्वरूप है। और जब जब अवस्था में ये स्खलन आता है, ब्रेक आता है, ऊपर नीचाई होती है, तो वो शक्ति नहीं बनती है। बाबा कहते हैं ना, लाइट आए जाए आए जाए आए जाए, तो वो पसंद नहीं आएगा, वो तो और ही डिस्टर्बेंस, तकलीफ लगती है। आज अवस्था अच्छी, मूड ऑफ, आज आज उमंग उत्साह है, कल खुशी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना शिव बाप समान स्थिति बनानी, ब्रह्मा बाप समान व्यवहार हो, आचरण। तो बाबा की महिमा में दो चीज हम गाते हैं, सदा और संपूर्ण। कितनी अव्यक्त मुरलियों में हमेशा बाबा ने क्या अंडरलाइन कराया है, सदा। अनुभव तो कभी कभी हुए हैं तभी तो लगे रहे हैं, अगर प्राप्ति का अनुभव नहीं होता तो हम पुरुषार्थ में लगे नहीं रहे। परंतु सदा वो स्थिति, और जितना ऊंचे स्थान पर, जिम्मेवारी के स्थान पर निमित्त बनते हैं और उनके मान शान हम लेते हैं, हिसाब भी उस हिसाब से किया जाएगा, हिसाब भी तो उसी लेवल से किया जाएगा हमारा। बाबा कहते ना, मैं कणे का घणा देता हूं पर कणे कणे का हिसाब भी लेता। और पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि जो निमित्त है, साथी है, उनकी तो अवस्था बनानी ही है, बाराती नंबर वार चलेंगे, पर बाबा ने कहा जो साथी है वो तो समान, उनको तो बनना ही होगा। हाँ, साथी तो शोभा दे ऐसे चाहिए ना बाबा ने कहा, इसलिए निमित्त जो है उनको तो बनाना ही होगा। उसमें हमारी इच्छा नहीं चलेगी कि जितना होगा उतना करेंगे, वो नहीं चलेगा। बाबा तो बना ही रहा है, नहीं तो समय और परिस्थिति भी बनवाएगी। सिर्फ बाबा से लेना नहीं है पर रिजल्ट भी देना है हमें, इसलिए हमें साइलेंस में बैठकर सोचना है और अपने आप को कन्विंस करना है कि अवस्था बनानी ही है। सिर्फ सेवा से खुश नहीं होना है कि हम ये सेवा करते, और उसमें ये दोनों धारणाएं, एकांत और एकाग्रता, एकांत है ना, ये मनोस्थिति है, स्थान नहीं, मन की स्थिति एकांत की चाहिए कि अब इस मेरे मन के अंदर और कोई नहीं, एक बाबा। बाबा कहते हैं ना एक के अंत में स्थित हो जाना, लौकिक संबंधों में भी ये वफादारी मांगी जाती है कि नहीं? लौकिक संबंध में भी ये वफादारी चाहिए, जिससे जीवन जोड़ा वो ही बस, और कोई नहीं। उसको एक व्रता कहते हैं, एक नामी कहते हैं, एकांत कहते हैं। कहते हैं ना, प्रेमी एकांत में मिलते हैं, बाजार में नहीं। अगर बाबा से प्यार है, समर्पण मयता है, समर्पण मयता, शरीर से सेंटर में आके रह जाना वो नहीं, वो तो हर कोई रहने चाहता है। बाबा इतना सुख देते, पर मनोस्थिति एक नामी, एक व्रता, एकांत की। और दुनिया में ये चीज हम देखते हैं ना, आज भी बाबा ने आशुक माशुक की बात कही थी। प्यार है वहां कितनी समर्पणमयता, वफादारी आती है। दादियों के बारे में हम सुनते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आप कैसे बाप समान बने, दादियां कहती हैं, हम तो बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बन गए, हमें कोई मेहनत नहीं लगी, बाबा से प्यार इतना, जो बाबा कहे फॉलो करते गए, प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते गए। इसलिए सिर्फ बुद्धि नहीं, दिल और दिमाग, प्यार बाबा से इतना। हम ज्ञान समझ कर बाबा के बने, लॉजिकली कन्विंस होकर बाबा के बने, पर लॉजिक के बाद श्रद्धा और भावना बाबा में, तो एकाग्रता सहज आएगी। एकाग्रता सिर्फ अभ्यास से नहीं आती, अभ्यास भी जरूरी है, परंतु अभ्यास के साथ प्यार, श्रद्धा, समर्पण, ये एक बाबा के प्रति। क्या अब इस मन और बुद्धि पर एक बाबा का ही अधिकार है? अब इस पर और कोई अधिकार नहीं कर सकता, और उसके लिए चाहिए एक बाबा से प्यार। ये ऑटोमेटिक है ना, जिससे प्यार हो जाता है मन वहां वश हो जाता है। हमारा एकाग्रता हठ दमन से नहीं, बाबा से प्यार इतना कि बुद्धि वहां ही लगी रहे। प्रैक्टिकल देखते हैं ना, देहधारियों के प्यार में अपना परिवार, अपने बड़े, समाज को भी छोड़कर उसके पीछे भागते। तो ये अंदरूनी बात है कि मेरे मन और बुद्धि में अब और किसी का आकर्षण नहीं। क्यों पवित्रता को इतना महत्व बाबा देते हैं? क्योंकि और किसी का मन बुद्धि में आना एक प्रकार से बेवफाई है ना, बेवफाई है बाबा के साथ। और फिर भी बाबा कितना कल्याणकारी है कि हमें उनके अपने घर में रखते, हमारी वो पालना करते। पर वो जो फ्लक्चुएशन बार बार रहता है वो ताकत नहीं बनने देता, जिसको हम स्थिति कहते। इसलिए अपने अंदर को हम खुद ही जानते हैं और तो नहीं जानते हैं। प्यारे बाबा ने, दादियों ने, बड़ों ने, निमित्तात्माओं ने, ईश्वरीय परिवार ने, इन सबके सहयोग से इतनी अवस्था बनी है जहां अभी हम हैं। पर अब आगे का जो कार्य है, बाबा कहते हैं ना, अब रिफाइननेस, फाइनल फिनिशिंग, अब जो करना है वो खुद के पुरुषार्थ से ही हो। इसलिए ड्रामा ने 8-10 मास हमें बहुत मौका दिया साइलेंस में रह सकते, आराम से तपस्या का पुरुषार्थ कर सकते, है ना। बाबा ने ये हमें चांस दिया, कंपलसरी। हम खुद नहीं निकालते थे बाबा के कहने पर भी, ड्रामा ने कंपलसरी सबको करा दी। सबने एक्स्ट्रा योग भी किया, अव्यक्त मुरलियों की स्टडी भी की, मनसा सेवा भी की। टाइम ही टाइम था, पर एकाग्र कितने हो सके, मन कितना लगा। मन कितना लगा, एकरस स्थिति से हम मनसा सेवा कितनी कर पाए। तो ये भी एक स्वदर्शन हो गया कि जिस आध्यात्मिक लक्ष्य से हम बाबा के बने हैं, वास्तव में उसमें कितनी रुचि है हमारी। उस ज्ञान योग में कितनी रुचि है, और अंत तक। ऐसा नहीं है कि वातावरण अनुकूल हो तो हम एकाग्र हो सके, डिस्टर्बेंस बहुत था तो एकाग्र नहीं हो पाए। नहीं, ये सब तो रहना ही है, क्योंकि ये वास्तविकता है। संसार की रियलिटी ये है कि वैरायटी सिचुएशन आत्माओं के वैरायटी व्यवहार डिस्टरबेंस, उसके बीच मुझे एकाग्र हो रहा है। हमारे हाथ में इतना है कि खुद अपनी सिचुएशन को देखो और डिस्टरबेंस को कितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं वो आप करिए। क्योंकि अपनी दिनचर्या काफी कुछ अपने हाथ में है। अगर हमें तपस्या में इंटरेस्ट है तो हम उसका टाइम जरूर निकालेंगे रोज की दिनचर्या। नहीं तो वर्क कॉन्शियस कारोबार चलता है। प्रवृत्ति, फिर यज्ञ की प्रवृत्ति, ईश्वरीय परिवार के सारे रीत रस्म कारोबार है ना, हम उसी में लगे रहेंगे। परंतु हम योगी हैं, तपस्वी हैं, और ये जीवन पद्धति हमने किस लिए अपनाई? बाबा कहते हैं ना, अलौकिक जन्म लेने के बाद लौकिक में ही फंसे रहेंगे तो अलौकिक जन्म लेने का फायदा क्या है, मतलब क्या है? अगर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें अपनी लौकिक सांसारिक कामनाओं को कम करना चाहिए, तभी आप फोकस हो सके। फिर आप सेवा कारोबार में भी देखो, सेंटर कारोबार में भी, और आपके अपने ग्रस्त के कारोबार में भी देखो। हमने दुनियावी रूप से बहुत कुछ ज्यादा नहीं किया, हम ब्रह्मा कुमारी बन गए, ब्रह्मा कुमार बन गए, है ना। दुनियावी रूप से भी लोग अपने लक्ष्य रखते हैं और अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं। छोटा व्यापार शुरू करेंगे, फिर बड़ा बिजनेस करने के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं और क्लास वन ऑफिसर बनने तक पहुंचते हैं। सरपंच बनेंगे, तालुका परिषद अध्यक्ष बनेंगे और फिर एमएलए मिनिस्टर तक पहुंचते हैं। तो वो अपने दुनियावी रूप से आगे बढ़ते और हम दुनिया के हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं बने तो हम यही बताते हैं ना कि भाई हम तो ज्ञान में आ गए तो फिर हमारा हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमारी दुनियावी रूप में कोई प्रगति हमने नहीं की तो उसका कारण हम यही बताते हैं ना कि हम तो ज्ञान में आ गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, समर्पण हो गए, उसी सेवा में लग गए। पर जो क्षेत्र हमने चुना है उसमें हम क्या बने? ज्ञान योग में क्या मास्टरी, उसमें हमने क्या अवस्था बनाई, किस गुण में, किस शक्ति में? उसमें क्या हमने अचीव किया? अगर वो हम देखते हैं तो हमें लक्ष्य बनेगा कि हमें विशेष कैसे बनना है ना। आजकल एक्सपर्टाइजेशन का जमाना है, कॉमन MBBS की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो हम किस बात में एक्सपर्ट बने, ये तो हर एक खुद अपने आप को देखेगा ना। अभी तो हम वो सेवा करते हैं जो हमारे पास है, वो हम लोगों को देते हैं। ज्ञान है, ज्ञान देते हैं। कुछ अनुभव की बातें हैं, वो बताते हैं। अब समय कौन सी सेवा का कि उनको जो चाहिए वो आप दे सको। वो कहेंगे ज्ञान नहीं सुनना है हमें, आप शक्ति दो, बस हमारे जीवन में अशांति है, हमें शांति चाहिए। उनको जो चाहिए वो देने की क्षमता हमारे में है तो कहेंगे कुछ स्पेशल। गुण सभी चाहिए पर मास्टरी भी तो किसी में चाहिए। तो उस लक्ष्य से जब हम पुरुषार्थ करते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को देखिए, आप में कौन सी विशेष क्वालिटी है और उस अनुसार फिर अपनी पर्सनालिटी बनाना। होता है ना, हर एक की अपनी स्पेशल पर्सनालिटी होती है कि ये इसको देखो, जब देखो सदा ये खुशी में रहे, इसके आनंद की पर्सनालिटी। इससे शक्ति मिलती है, ये शक्तिशाली है, हमेशा हर परिस्थिति में एक रस रहते, डल नहीं हो जाते हैं, उदास नहीं हो जाते हैं, हर हाल में अच्छा लड़ोल रहते, तो ये ताकत है। तो ये सारी क्वालिटीज तो है ही है, एकांत, एकाग्रता। परंतु मेरा अपना अनुभव ये है कि जब तक खुद की लगन नहीं, ये हमारे में धारण नहीं होती। बाबा कहते हैं पर मेरा कहना क्या है, मैं क्या करना चाहती, मेरी लगन क्या है, मैंने क्या फाइनल किया। तो ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य मीन्स जो करना है उसमें फोकस। वैराग्य की तो समझ आ गई, वो छोड़ दिया, और वो छोड़ना है, वो त्याग। परंतु जहां मुझे एकाग्र होना है वो मुझे शक्तिशाली रूप से धारण कर, तो त्याग भी चाहिए। कौन सी चीजें हैं जो ब्राह्मण जीवन में नहीं होनी चाहिए पर अभी भी है, इस अलौकिक जीवन को शोभा नहीं देती है। ज्ञान से मिले विवेक अनुसार जो नहीं होनी चाहिए पर है, माना जिगरी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, और एक धक से त्याग नहीं हुआ। और जब तक वो चीज है माना वो तपस्या में पावर नहीं भरेगा। जो नहीं करना चाहिए वो भी करते रहे और जो करना चाहिए वो भी करते रहे तो पावर तो खत्म ही होता रहेगा ना। बाबा कहते हैं ना ज्ञान और भक्ति एक साथ नहीं हो सकती, दिन और रात एक साथ नहीं हो सकती। प्रकाश का आना माना अंधकार का जाना। तो मेरा अपना हिसाब क्या है, रिजल्ट क्या है। और दूसरा, जो लक्ष्य हाथ में लिया, जो कर्तव्य हाथ में लिया, उसके लिए हम कितना फना हुए, उसके लिए क्या त्याग किया। एक है कमजोरियों का त्याग, बुराइयों का त्याग, पर एक है कि फना हो जाना। हमने अपना भूख आराम प्यास मौज मजा निंद्रा बाबा के लिए, बाबा के कर्तव्य के लिए, पुरुषार्थ के लिए कितना किया, तन मन धन कितना, हर एक अपना हिसाब है। जिसको बाबा कहते हड्डी हड्डी स्वाहा कर, तो ये हड्डी हड्डी स्वाहा सबको होना है, समर्पितों को भी होना है और घर में रहने वाले बाबा के बच्चों को भी होना। माना जिगरी पुरुषार्थ करना, जिगरी सेवा कर। और समय पर जब जरूरत है उस समय हम बाबा के काम में कितने आते हैं। बाबा ने कहा है कि दिल से एक धक से समय पर जो मदद करते हैं उनको बाबा अंत तक मदद देने के लिए बंधा हुआ है। ऐसा समर्पण हमारा कौन सा है। जो आपको गर्व हो अपने आप पर कि हम दिल से स्वाहा हुए। अवस्था इन चीजों से बनती है। ये टाइम है जब भगवान को हमारी मदद चाहिए, हमारी स्थिति की मदद चाहिए अब तो, क्योंकि अब जो सेवा होनी है वो तो स्थिति से ही होनी। ये सहयोग देने कौन तैयार है। धन साधन सब कुछ तो लगाते हैं, वो तो भक्ति में भी लोग लगाते हैं, भक्ति में भी अपने अपने धर्मों में, संप्रदाय में, कार्यों में, समाज सेवा में लोग लगाते ही है, वो बड़ी चीज नहीं है। वो स्वाहा करने से के साथ और आगे लगन पक्के सच्चे जिगरी अवस्था इन चीजों से बनती, ऐसे अवस्था नहीं बनती। आपका दिल स्वीकार करे कि हमने ऐसे ही दिन नहीं बिताए हैं संगम के, हमने सफल किए हैं दिल से, या सेवा या पुरुषार्थ। और ऐसी जिगरी लगन है, समर्पण है, स्वाहा है, उस अवस्था को कोई हिला ही नहीं सकता। फिर कोई भी बात हो, प्राकृतिक आपदा हो कि खुद के शरीर के हिसाब किताब हो या आपसी स्वभाव संस्कार की बातें, क्योंकि हम इन बातों में न्यारे ही रहते हैं, मन बुद्धि को वहां खर्च नहीं करते। हम केंद्रित है कि जो बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था में मुझे रहना है। तो बातें आएंगी पर स्थिति ऊपर नीचे नहीं, और उसी को कहा जाएगा कि अवस्था बनी है। ऊपर नीचे हो जाना माना अवस्था बनी ही नहीं। तो जब जब ऐसे भट्ठी का मौका मिलता है और हम सभी बातों से फारिग होकर आते हैं, बैठते हैं, तो साइलेंस में रहकर अपने आप में ये सारी बातें गहराई से देखना, महसूस करना बहुत जरूरी है। और भी गहराई से आप सोचिए और अपनी रीति से भी चिंतन करिए, इसको बाबा कहते हैं अनुभव की ऑथोरिटी। ओम शांति।
बहुत सुंदर। हम अपनी एक रस स्थिति कैसे बनाएं? एकांत और एकाग्रता के द्वारा। बहुत सुंदर मार्गदर्शन। दीदी का एक हाथ हिलाकर हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।